ओम शांति।
घूमने वाला था
भट्टी में। आज के इस सुंदर वातावरण में आदरणीय शीलू दीदी जी हमारे सन्मुख पधारे हैं। हम सब बाबा के राजयोगी तपस्वी बच्चे दीदी जी का बहुत बहुत दिल से स्नेह भरा स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हाँ, एक बार ताली बजाएं, सभी दीदी जी का स्वागत करें। मधुरता की मूरत है आप, स्नेह और शीतलता से सजी है सूरत आपकी। आपको देखते ही मन में शांति, योग तपस्या ताजा हो जाती है। आदरणीय शीलू दीदी जी, बाल्यकाल से साकार ब्रह्मा बाप की पालना में पले और आपने साइंस से ऊंचे नंबरों से अपनी शिक्षा प्राप्त की, और जब से आप बाबा के बेहद यज्ञ में समर्पित हुए तो बहुत वर्षों से यज्ञ में जब नई नई आत्माओं के लिए राजयोग शिविर होने लगे तो वो राजयोग शिविर कार्यक्रमों का आदि से लेके अब तक भी सारा निर्देशन आदरणीय शीलू दीदी जी करते हैं। राजयोग कमेंट्री की अगर बात करें तो दीदी जी के मुख द्वारा आदि में शुरू हुई कमेंट्री आज भी उतनी ही शाश्वत है, कानों में गूंजती है। योग युक्त कर देने वाला ये सुमधुर स्वर जैसे साक्षात सरस्वती बोल रही हो। दीदी जी ने पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड के गोले में, सभी देशों में घूमकर प्यारे बाबा का संदेश दिया। अनेक आत्माओं की बुद्धि एकाग्र करने का पुण्य प्राप्त किया। दीदी जी वर्तमान समय पांडव भवन महायज्ञ में ही विराजते हैं। आप बाप दादा और दादियों के अति समीप के रतन हैं। वर्तमान समय जो बाबा का एजुकेशन विंग है उसके आप मुख्यालय कोऑर्डिनेटर हैं। विशेष रूप से दीदी जी की वाणी में जो मधुरता है, जो शीतलता है, जो शालीनता है, वो दिल को बहुत सुकून देती है। एक और बहुत बड़ी विशेषता है, दीदी जी 5-6 भाषाएं अच्छी रीति ट्रांसलेट करते हैं। डबल विदेशी बच्चे सबसे ज्यादा ट्रांसलेशन शीलू दीदी जी द्वारा ही पसंद करते हैं। जब से अव्यक्त बाप दादा की मुरलियां चलने लगी, दीदी जी के ट्रांसलेशन को ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। तो हेडक्वार्टर में रहकर डबल विदेशी भाई बहनों के बेहद परिवार के लिए अलग अलग भाषाओं में अनुवाद, वो दीदी जी के व्यक्तित्व की एक बहुत बड़ी विशेषता है। तो ऐसी सरस्वती की अवतार, मधुरता की, सरलता की प्रतिमूर्ति आदरणीय शीलू दीदी जी से हम सुनेंगे। दीदी जी के क्लास का विषय है श्रीमत का महत्व, श्रीमत का महत्व। आदरणीय शीलू दीदी जी,
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत देकर कितना महान बनाया है। श्रीमत हमारे लिए केवल ज्ञान अमृत ही नहीं है लेकिन हमारे जीवन का आधार है। और वो कहाँ से मिलती है श्रीमत? बाबा की मुरलियों से। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा जो महावाक्य उच्चारण करते हैं वो श्रीमत हम बच्चों को मिलती है। जिस श्रीमत का पालन कर हम आत्माएं कितनी ऊंची बन गई है। भविष्य में तो देवता बनेंगे ही, लेकिन वर्तमान समय भी हम ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण हैं। ब्रह्मा के मुख द्वारा एडॉप्ट हुए शिव बाबा के बच्चे, ब्रह्मा के मुख द्वारा भगवान की श्रीमत हम सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य धन्य बनाते हैं। लेकिन अब हमें श्रीमत को अच्छी तरह समझने के लिए मुरलियों की इतनी गहराई में जाना होगा। कई भाई बहने मुरली तो पढ़ते हैं, बाबा कई बार कहते हैं नियमी नाथ बन जाते हैं, अमृत वेले नियम से उठना, योग में बैठना, मुरली सुनना आदि आदि सब करते हैं, लेकिन मुरली की गहराई क्या होती है, उस गहराई में जाकर पहले मनन करना, चिंतन करना, मंथन करना, उसका स्वरूप बनना, अर्थात प्रैक्टिकल जीवन में लाना, उसके लिए कुछ अपने अंतर का निरीक्षण करना, फिर उसका विश्लेषण करना कि बाबा हमसे आखिर क्या चाहते हैं, उसको हम कहते हैं सचमुच मुरली का सही अध्ययन करना। और आज से जून महीना शुरू हुआ है, इस जून महीने को हम मम्मा के लिए समर्पित करते हैं। 24 जून को 1965 मम्मा ने अपना देह त्याग किया था। आज से 52 वर्ष पूर्व मम्मा ने कैसे बाबा की मुरली को आत्मसात किया, या यूं कहें जैसे भागवत में वर्णन है कि जब श्री कृष्ण मथुरा जा रहे थे कंस का वध करने लिए, तो राधे ने उनको जाने नहीं दिया, आप फिर कब लौटोगे, ये मुश्किल होगा, इसीलिए आप न जाओ, या तो वायदा करके जाओ कि आप अवश्य लौटोगे। और उसके लिए श्री कृष्ण ने उनको अपनी बांसुरी दे दी कि ये अमानत है, इससे सीधे मैं वापस जरूर आऊंगा। तो राधे ने, कोई कहते राधे ने वो उसकी मुरली चुरा ली कि पता नहीं हाँ इनकी अमानत होगी तो जरूर वापस आएंगे, कोई ऐसे कहते। तो मानो संगम युग पर भी मम्मा ने जैसे भगवान की मुरली को ऐसे चुरा लिया, यूं कहें तो गलत नहीं होगा। मम्मा कैसे एक एक अक्षर मुरली का इतना ध्यान से पढ़ती थी, सभी दादियों को हमने देखा। मम्मा की तो मुरलियां आप सुनते भी हो, दादियों के भी क्लासेस आप सुनते हो। इतनी गहराई में जाती थी हमारी दादियां बाबा की मुरली को पढ़कर। मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ दादी जानकी जी का। एक बार मैं दादी जानकी के पास गई, कुछ काम था, उस समय दादी जानकी मुरली पढ़ रही थी। अब मैं जैसे पहुंची, मैं बैठ गई बाजू में कि दादी पूछेगी फिर मैं सुनाऊंगी। लेकिन मैंने देखा दादी उस मुरली पढ़ने में इतनी मग्न थी जो बात मत पूछो, आंख ऊपर करके भी नहीं देखा कि कौन आया है, इतनी उसमें व्यस्त थी। तो मैं दादी को देख रही थी कि कितना दादी उसमें कितनी मगन है। तो हमने इतनी प्रेरणा ली दादी से, क्या सचमुच हम भी ऐसे मगन होते हैं बाबा की मुरली जब सुनते हैं या पढ़ते हैं? इतने मगन होते हैं या किसने बुलाया फिर गए वहां छोड़ा ये किया? और हमने देखा दादी जी ने जब तक मुरली पूरी नहीं की तब तक आंख भी ऊपर उठाकर नहीं देखा। लेकिन मैं आनंद ले रही थी हाँ दादी को देख करके कि दादी देखो कितना मुरली में मग्न है, कितना बड़ा हमने दादी से कितनी प्रेरणा ली। तो ये दादियों का प्यार था, बाबा से प्यार माना बाबा की मुरली से प्यार। पर हम देखते हैं कई भाई बहने नेमी नाथ तो बन जाते हैं, मुरली भी पढ़ते हैं, क्लास में भी जाते हैं, लेकिन फिर उनसे पूछो आज बाबा ने क्या सुनाया तो बहुत सोचने लगते हैं क्या सुनाया। तो बाबा कई बार कहते थे डब्बे में ठिकरी, एक खाली डब्बा हो, अब उसमें ठिकरियां भर दो ना, मिट्टी के बर्तन मिट्टी का कुछ होता है तो वो टूट जाए तो उसके टुकड़े टुकड़े होते हैं तो उसको ठिकरी कहते हैं। तो डब्बे में ठिकरी अब उसमें डाला और आवाज करो डब्बे को, एल्यूमिनियम का डब्बा हो या कोई भी, तो आवाज करो तो आवाज तो खूब होगा क्योंकि कुछ तो पड़ा है ना उसके अंदर, लेकिन क्या पड़ा है, ठिकरियां पड़ी है। तो सुन तो लिया हमने बाबा के महावाक्य लेकिन फिर रिपीट नहीं कर पाते हैं। चलो रिपीट भी कर पाते हैं परंतु उसकी गहराई में जाकर के उसको मनन चिंतन करके मंथन करके सुना नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका महत्व इतना समझते नहीं है। हम दादी जानकी जी का बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। दादी जानकी जी जब बाबा के पास आई यज्ञ में तो मुरली के लिए तो बहुत प्यार था दादी को और बिल्कुल आगे आगे बैठती थी, बाबा की मुरली चलती थी बिल्कुल आगे आगे बैठती थी और आगे बैठ करके ऐसे सिर हिलाती रहती थी। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कि डांसिंग गर्ल जो होती है ना, अगर वो नाचती है तो वो लोग अगर ताली नहीं बजाते हैं तो उनको उमंग नहीं आता है, तो उमंग लाने के लिए कहेंगे ताली बजाओ हाँ उमंग लाने के लिए, या वंस मोर करो तो और जोर से नाचेगी इस प्रकार। तो बाबा भी कहते थे कि सामने मेरे बैठे हुए जो है ना, वो कोई झुटके अगर खाते हो ना पीछे जाए, सामने वो बैठने चाहिए जो उस मुरली से वो आनंद ले रहे हैं, रस ले रहे हैं। तो दादी जानकी तो बिल्कुल आगे बैठती थी और बहुत रस लेती थी लेकिन सिर ऐसे नीचे करती थी ऐसे से। तो एक दिन बाबा ने उसको कहा, माना हाँ मैं हाँ मिलाती थी, हाँ बाबा ठीक कह रहे हैं। तो बाबा ने एक दिन उसको बुलाया तो बाबा ने कहा कि आप जो मुरली सुनती हो ऐसे सिर हिलाती रहती हो तो आप जो सुनती हो वो दूसरों को सुनाती हो? तो दादी ने कहा नहीं बाबा, क्योंकि इतना नहीं दादी बोलती थी, दादी जानकी की बात करें इतना नहीं बोलती थी, शांत बहुत रहती थी। नहीं बाबा। तो बाबा ने कहा तुम अगर सुनाती नहीं हो जो सुनती हो तो क्या तुम केवल कबूतर हो? कबूतर क्या करता है, ऐसे करता है ना, कबूतर बोलता नहीं है कुछ, खाली ऊ करता है, वो कोयल की तरह थोड़ी कोई बहुत सुंदर सुंदर आवाज निकाल सकता, खाली ऊ करता रहता। तो बाबा ने क्या, तुम कबूतर हो, बाबा से जो सुनती हो वो दूसरों को सुनाओ। तो उसने कहा जी बाबा हम करेंगे। फिर वो कोई न कोई को जरूर सुनाती थी, आज बाबा ने ये कहा, याद है बाबा ने ये कहा ये कहा। फिर बाबा ने उनसे एक दिन पूछा अच्छा सबको सुनाती हो? तो कहा बिल्कुल बाबा, आप जो कहते हैं अंगे अखरे वो ही शब्द में बाबा दूसरों को सुनाती हूँ, बाबा ने ये कहा ये बाबा के शब्द सुनाती हूँ। तो बाबा ने क्या, क्या तुम पोपट हो ना, तुम पैरेट हो? पहले बाबा ने कहा कबूतर हो, माना पिजन हो। फिर पिजन माना हिंदी में ये क्या बोलते, कबूतर, इंग्लिश में उसको पिजन कहते हैं। तो पहले बाबा ने कहा क्या तुम पिजन हो? फिर बाबा ने क्या कहा, तुम पैरेट हो, तुम तोता हो क्या? जो सुनती हो बस वही रिपीट करती हो, वो तो तोता भी करता है, क्या बड़ी बात है, तोता भी तो वही कहता है ना। कई बार वो कहानी सुनाते हैं कि वो एक तोता नलके पर बैठता था और वो नलका खोल देता था और अपने आप को भिगाता था। तो उसका जो मालिक था उसने उसको कहा गंगाराम नल पर मत बैठो, नल पर नहीं बैठो। अब वो नल पर भी बैठता था और पानी खोलता था और भिगाता था और कहता रहता था गंगाराम नल पर नहीं बैठो, गंगाराम नल पर नहीं बैठो, क्योंकि समझ तो थी नहीं, जो सुन लिया वो बोलता था। तो बाबा ने दादी को कहा क्या तुम तोता हो क्या, पैरेट हो? जो बाबा ने कहा वही सुनाती हो, उसमें अपना विचार सागर मंथन करो, विचार सागर मंथन करके सुनाओ। ये तो ठीक है जो बाबा ने कहा, पर विचार सागर मंथन करके सुनाओ। देखो मम्मा कैसे सुनाती है, मम्मा ऐसे नहीं बस कहा और बोला, सुना और बोला, मनन करती है, चिंतन करती है, मंथन करती है। तब उनकी देखो उनकी मुरली, मम्मा की मुरली का कितना महत्व है। तो दादी को बुद्धि में आया बरोबर हमको करना है। तो उसके बाद दादी इतना मनन करती थी, इतनी बार मुरली पढ़ती थी और देखो कैसे दादी के क्लासेस सारी दुनिया में प्रख्यात हो गए, सारी दुनिया में क्या नई सेवा की। तो फिर बाबा ने उनको जब विदेश भेजा तो वो अपना अनुभव सुनाती थी कि मैं जब विदेश में बाबा की सेवा के लिए गई, पहले तो मैंने बाबा को कहा, 74 में बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने उनको विदेश भेजा, विदेश सेवा सेवाएं शुरू हुई थी विदेश में। तो पहले तो बाबा को कहा कि बाबा मैं इंग्लिश तो जानती नहीं हूँ, विदेश में क्या जाके करूँगी, इंग्लिश तो जानती नहीं। बाबा कहते थे कि बच्ची आपको इंग्लिश को जरूरत नहीं है, आपको बहुत इंटरप्रेटर वो ट्रांसलेटर मिल जाएंगे, आपका वो आपका भाषण ट्रांसलेट करेंगे, बस आपको जाना है, आपको सकाश देनी है। फिर दूसरा एक बहाना दिया, बाबा मधुबन जैसा बाबा का कमरा वहाँ कहाँ मिलेगा? बाबा ने कहा तुमको मधुबन वहाँ जाके बनाना है, बनाना है। इसीलिए कोई बहाना नहीं चल सकता है, क्योंकि मधुबन से जाना नहीं चाहती थी, मधुबन भारत उनको प्रिय प्यारा था। तो दादी ऐसे अपने अनुभव सुनाती थी।
में तुमको आना है, शिव पिता विकराल विनाश खड़ा आगे
बाबा की मुरली से हमें जो श्रीमत मिलती है हम उस पर कितना ध्यान देते हैं, कितना हम उसे अपने जीवन में लाते हैं। बाबा कभी मुरली में कहते हैं, बाबा राय देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे सेवा करो, बच्चे ऐसे ऐसे आपस में सेमिनार करो, वरना मीटिंग करो, नए नए प्लान्स बनाओ, तो बाबा राय देते हैं। तो राय भी एक श्रीमत है, ऐसे नहीं हल्के में हम लेंगे, क्योंकि बाबा अनेक युक्तियां बताते हैं सेवा कैसे करो, वो भी मुरली में मिलती है। फिर बाबा हम बच्चों को आज्ञाएं करते हैं, बच्चे ये करना है, बच्चे ये नहीं करना है, ये बाबा की आज्ञा मिलना ये श्रीमत है। लेकिन इस श्रीमत में कितना प्यार भरा हुआ है हम ये देखते हैं ना, कितना प्यार भरा हुआ है। हर मुरली के अंदर कोई ना कोई स्वमान जरूर होता है, ये बाबा का हम बच्चों के प्रति प्यार है। मुरली की शुरुआत ही मीठे मीठे बच्चे से होती है। आज भी बाबा ने मुरली में कहा, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, जब ऐसे शब्द सुनते हैं तो कितना प्यार उभरता है बाबा के लिए, बाबा कितना प्यार करता है। तो आज मैं वो याद आ गया दादी प्रकाशमणि का वो दृश्य, कि दादी प्रकाशमणि जब ये मुरली सुनाती थी क्लास में सुनाती थी, तो जब ऐसा कोई शब्द आता था ना, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है, और दादी ये कहते 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 खो जाती थी, मुरली सुनाते सुनाते खो जाती थी, और फिर रिपीट करती थी, बाबा कितना मीठा है, कितना प्यारा है। फिर हम देखते रहते थे दादी को कि और आगे क्या कहेगी, फिर दादी कितना उसका कैसा रिएक्ट करती थी, बाबा को देखकर ऊपर हाथ ऊपर आंखें करके, बाबा ऐसे प्यारे, बाबा को खा जाऊं ऐसे करती थी दादी, यानी इतना प्यार अब कैसे जताएं। तो इस प्रकार से मीठी चीज को क्या कहेंगे, खा जाएं। हाँ, गुलाब जामुन अगर रहता है वहाँ, गुलाब जामुन रसगुल्ला कुछ ऐसी मिठाई, तो मुख में पानी आ जाता है ना, खा जाऊं जैसे, बस खा जाऊं मुंह में डाल दो। तो दादी बाबा के लिए भी ऐसे करती थी, इतना प्यार उभरता था। तो हर मुरली में बाबा के लिए इतना प्यार उभरे, जो श्रीमद भगवान हमको दे रहे हैं। बच्चे अपने आप को क्या समझो, आप कौन हो? साकार मुरली में तो जरूर कोई न कोई हमें स्वमान मिलता ही है। कल भी बाबा ने कहा आप शिव शक्ति सेना हो, फिर बाबा कहते आप खुदाई खिदमतगार हो। हर मुरली में कुछ मिलता है, उसका भी अगर पक्का निश्चय हो और फिर नशा चढ़े तो बस उस नशे में तो बाकी सब बातें भूल जाती है। कल भी बाबा ने कहा कि मनुष्य तो कितना नशा करते हैं। कल नो टोबैको डे था ना, तंबाकू निषेध दिवस, तो तंबाकू निषेध दिवस के दिन देखो तंबाकू मनुष्य खाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, नशा चढ़ाते हैं। तो भगवान ने तो हमको इतना नशा चढ़ा दिया है जो उन नशों की तो जरूरत ही नहीं है। वो नशा पीते हैं तो और नाली में पड़े होंगे तो भी कहेंगे मैं तो राजा हूँ, कहा नाली में पड़े हैं शराब पी के ऐसे नशे में चूर है, सोचेगा मैं राजा हूँ। लेकिन सब नशों में है नुकसान, सिवाय किसके एक बाबा के, एक नारायणी नशे के। और वो बाबा की मुरली से पीते जाओ वो नशा, तो आपका नशा इतना चढ़ा रहे। सब नशों में नुकसान सिवाय एक नशे के, तो वो नारायणी नशा पियो। कहते ना नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, वो खुमारी है, वो नशा है जो दिन रात चढ़ा रहे कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। हमारा टीचर कौन है? आज भी बाबा ने मुरली में कहा किसी का बाप बड़ा आदमी होता है, बैरिस्टर है, जज है, डॉक्टर है, सर्जन है, राजा है, तो बच्चे को कितना नशा होता है, मैं किसका बेटा हूँ? तो हमको कितना नशा होना चाहिए, हम किसके बच्चे हैं? हमारा टीचर कौन है? बाबा की मुरली माना भगवान के माँ वाक्य, वो हमारी पढ़ाई है। हमारा टीचर स्वयं भगवान है जो हमें हर मुरली में इतना प्यार देते। बाबा कई बार कहते लव लेटर है ये, चार पेज का लव लेटर। तो इसीलिए जब हम बाबा की मुरली सुनते वो नशा कहाँ तक चढ़ता है वो देखना है। इसलिए नेमीनाथ बन के बस पढ़ लिया, बाबा तो वही कहते बच्चे अपने आप को आत्मा समझ, मुझे याद करो, वो तो है, वो तुम करते ऐसे ही कह देते। लेकिन अपने आप को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये एक ऐसा पाठ है जो आदि का भी पाठ है और अंत का भी पाठ है। अंत में कौन मुझे याद आएगा? अगर बाबा के सिवाय और कोई याद आता है इसका मतलब है कि हमने अभी तक मुरली का पाठ पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं था। आज भी बाबा ने मुरली में कहा कि कोई मरने पर है उनको कहते राम राम कहो, पर राम को तो वो जानता ही नहीं है, भगवान को जानता ही नहीं है, जिसने सारा जीवन कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया वो अंत में क्या राम राम कहेगा? कुछ नहीं कहेगा, हाय मेरा बच्चा, हाय फलाना, हाय फलाना फलाना, उनको ही याद करेगा, देहधारियों को ही याद करेगा। लेकिन जब बाबा कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, ये कोई कितनी उसमें गहराई है। और ये पाठ बाबा कहते हैं मैं कहता रहूंगा जब तक तुमको पक्का नहीं होगा। एक माँ होती है ना, बच्चे को बार बार टोकती है, कुछ कहती है, तो बच्चा कहेगा मम्मी आप बार बार कहती हो, तो माँ कहेगी कि बेटा जब तक तुम करोगे नहीं तब तक मैं कहती रहूंगी। तो बाबा भी क्या करते हैं है? जब तक तुम देह अभिमान नहीं छोड़ोगे तब तक मैं कहता रहूंगा, क्योंकि अंत में यही काम आना है और कुछ काम नहीं आना है। न व्यक्ति काम आएंगे, न वस्तु काम आएंगे, न कोई वैभव या कोई बातें दुनिया की, कुछ काम नहीं आएगा। लेकिन ये तब होगा केवल एक बाबा की याद जब बहुत काल का अभ्यास होगा, बहुत काल का अभ्यास होगा, क्योंकि बाबा ने कह दिया है सब अचानक होना है, सब अचानक होना है। इसलिए बीच बीच में बाबा हमें सावधान भी करते रहते हैं, बच्चे समय कम है, बच्चे समय कम है। उसके लिए बाबा कितनी शिक्षाएं देते रहते हैं, बच्चे जीते जी मर जाओ, आप मोए मर गई दुनिया, कितनी शिक्षाएं हैं। ये आज्ञाएं हैं बाबा की, ये शिक्षाएं आज्ञा के रूप में है, बच्चे ये करो बच्चे ये नहीं करो, पर उसमें कितना प्यार भरा हुआ है, क्योंकि बाबा हमारा कल्याण चाहते हैं, सत्य ज्ञान देते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम है, तो सत्य ज्ञान देकर के हमारा तीसरा नेत्र खोल देते हैं, कल्याणकारी बन करके हमें हर श्रीमत देते हैं। आज भी बाबा ने कहा मैं तुम बच्चों को आप समान बनाने आया हूँ, जो मेरे पास ज्ञान है मैं सब कुछ बच्चों को दे देता हूँ, सब कुछ, कोई ऐसी बात नहीं है जिसका ज्ञान बाबा के बच्चों को नहीं है। परंतु अगर प्रश्न है, कोई शंकाएं अभी तक है, माना अभी तक बाबा की मुरली पर पूरा ध्यान देते नहीं है, जो बाबा कहते उस पर चलते नहीं है, अगर चले तो एक एक ज्ञान का रत्न लाखों रुपयों का बाबा कहते हैं, इतने माला माल हो जाए, और जितना बांटे उतना और बढ़े, ये ज्ञान धन ऐसा है। इसलिए बाबा हमें श्रीमत जब देते हैं तो उसमें कितनी आज्ञाएं देते हैं, सोचो तो क्या सोचो, बोलो तो क्या बोलो, करो तो क्या करो। तो सोचने के लिए भी श्रीमत, बोलने के लिए भी श्रीमत, करने के लिए भी श्रीमत, खाओ तो क्या खाओ, हाँ पहनो तो क्या पहनो, बाबा मना थोड़ी करते रंगीन मत पहनो, नहीं भले पहनो बच्चे, लेकिन हाँ क्लास में आते हैं ड्रेस वाइज ड्रेस, ये बाबा का यूनिफॉर्म है, स्कूल में जाते हैं ना, बाकी शादी में जाते हैं भले पहनो, बाबा मना थोड़ी करते हैं। तो हर चीज के लिए बाबा हमें श्रीमत देते हैं, और अगर समझो कोई मूंज हो कि पता नहीं करूं ना करूं, उस समय वो याद रखो अगर ब्रह्मा बाबा यहाँ होते तो वो क्या करते, ब्रह्मा बाबा इस समय यहाँ होते तो क्या करते, मुझे भी वही करना है, वो मुझे भी वही करना है। जिसको बाबा कहते हैं बाप की कदम पर कदम रखना, जिसको बाबा कहते हैं बस कॉपी करना है, दुनिया में कॉपी करना नॉट अलाउड, नहीं है छुट्टी, पकड़े जाएंगे फिर सजा होती है, कॉपी किया। और यहाँ बाबा कहते हैं खूब कॉपी करो, बाबा को कॉपी करो, 10 कदम ब्रह्मा बाप के, 10 कदम ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, कितनी बातें बाबा की मुरलियों में आती है। जब शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को जो कहा धक से, आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, वो पालन किया। शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को कहा कि बच्चे तुम्हारी जो चल अचल प्रॉपर्टी है वो सब माताओं के हवाले कर दो, इनको इनके नाम पर विल कर दो, उसमें मम्मा को लीडर बनाया था। बाबा ने ये नहीं सोचा, भले रहते परिवार में थे, बच्चे थे, पोतरे दोतरे थे, सब था, 5 बच्चे थे, 3 बेटियां 2 बेटे, शादीशुदा थे का सब, तो सब थे। लेकिन जब शिव बाबा ने ये कहा कि माताओं के नाम पर विल कर दो अपनी सारी प्रॉपर्टी जो बाबा की थी लौकिक में, बाबा ने और आगे कुछ नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा, किसने कहा है, भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा है। जब शिव बाबा ने कहा कि सबको प्रतिज्ञा करनी है कि हम अपने जीवन को पवित्र योगी बनाएंगे, सबने प्रतिज्ञा की, ब्रह्मा बाबा ने भी की। बाबा के आगे कितनी परीक्षा आई, लोगों ने कहा हे दादा लेखरा लखीरा जी, आपने क्या किया, इतनी छोटी छोटी बच्चियों को आपने प्रतिज्ञा करवा दी पवित्र योगी बनने की, मैंने तो दुनिया देखी नहीं है। तो बाबा क्या कहते, ये मैंने नहीं करवाई, ये उसने करवाई, उसने मुझे भी कहा। मैं भी तो गृहस्थी था ना, मैं भी तो परिवार में हूँ, कोई परिवार छोड़ा थोड़े, सन्यासी थोड़ी बना, परिवार में था। पर शिव बाबा ने मुझे ये प्रतिज्ञा कराई तो मेरे साथ इन्होंने भी की, क्योंकि शिव बाबा ने कहा। तो बाबा को कहते थे आप तो बूढ़े हो गए, आपने की तो कोई बड़ी बात नहीं, आपके तो पोते दोते सब हैं, लेकिन इन बच्चियों से क्यों कराई। तो बाबा ने कहा ये मैंने नहीं कराया, इसलिए उनसे जाके पूछो, वो जानते हैं। और सचमुच अगर उस समय वो बहनें जो थी इतनी यंग, अभी जो हमारी दादियां थी, अगर उस समय ये प्रतिज्ञा नहीं करती होती तो बताइए ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना होता होता कहां से होता। तो मानो तो उस समय जो बाबा ने किया, इसलिए ब्रह्मा बाबा ने कुछ नहीं आगे सोचा, शिव बाबा ने कहा है। तो कैसे बाबा की मुरली से वो प्यार हमें मिलता है, श्रीमत मिलती है। तो कभी बाबा राय देते हैं, कभी बाबा आज्ञाएं करते हैं, और हर चीज के लिए आज्ञा है, ये करो ये नहीं करो, नहीं करो के लिए भी आज्ञा है, क्या नहीं करो। और फिर इनसे ऊंचा शब्द है फरमान, बाबा फरमान करते हैं। फरमान माना इंग्लिश में कहते ऑर्डिनेंस, जैसे मिलिट्री वाले होते ना, अगर लड़ाई छिड़ गई मानो तो एक ऑर्डिनेंस निकलता है कि जितने भी आर्मी मिलिट्री वाले हैं वो सब वापस आ जाओ, वापस आ जाओ, क्योंकि युद्ध छिड़ गया। मानो जो भी कोई भी कार्य होता है तो एक फरमान है, अगर फरमान नहीं माना तो फिर बहुत बड़ी सजा है, दंड है। तो भगवान का भी हमें कितना फरमान मिलता है, क्योंकि बाबा चाहते ये मेरे बच्चे होवनहार देवताएं, ये मेरे मददगार बच्चे, विश्व को बदलने वाले बच्चे, सृष्टि को पावन करने वाले बच्चे। अब बाबा चाहे तो सब कुछ अपने आप कर सकता है, वो तो सर्वशक्तिमान है, लेकिन बाबा कितना नम्र होकर कहते बच्चे तुम सब मेरे मददगार हो, तुम्हारे बिना मैं कुछ नहीं कर सकता, खुदाई खिदमतगार बाबा ये बार बार कहते हैं। तो हम बाबा की खिदमत में हैं, सेवा में हैं, उनकी सेवा में हैं, माना जो उनकी श्रीमत है, जो उनकी आज्ञा है, जो उनका फरमान है वो मुझे पालन करना है। लेकिन उसमें कितना प्यार भरा हुआ है, कितनी प्राप्ति भरी हुई है, भगवान हमको विश्व का मालिक बना रहे हैं। आप सोचो तो सही, कितनी बड़ी बात है, ये छोटी मोटी प्राप्ति नहीं है। छोटी मोटी प्राप्ति तो दुनिया में सब करा लेते हैं, लेकिन विश्व का मालिक बनाना ये कितनी बड़ी प्राप्ति है। पर उसमें कोई संशय उठाए, बाबा कहते तो हैं पर पता नहीं, हाँ ये निश्चय ही नहीं है। तो एक तो निश्चय नहीं तो नशा तो चढ़ेगा ही नहीं, ये तो निश्चय चाहिए, ये कौन कह रहा है। जब नशा चढ़े उसका तब हम उसी अनुसार हम करें। आज बाबा ने कहा तुम, आज बाबा की है, बाबा ने काम दिया, तुम्हारा धंधा क्या है, तुम्हारा धंधा क्या है, आत्माओं को परमात्मा से मिलाना, दलाल बने हो। आज बाबा की मुरली में था दलाल बने हो, दलाल होता है ना बीच में, अब कुमार कुमारी की सगाई करानी है تو وہ دلال کہتا ہے یہ لڑکا ہے یہ لڑکی ہے, اور پھر وہ لڑکی کے ماں باپ کو کہتا ہے دیکھو یہ لڑکا بہت ہونہار ہے بہت اچھا ہے, اور لڑکی کو کہتا ہے ارے تم ماں شادی کرو گی نا تم جا کے مہارانی بنو گی, اتنا دھنوان ہے, مطلب بہت کچھ وہ دلال بیچ میں بہت کچھ کہتا ہے. یا شادی کے سمے بھی بیچ میں برہمن ہوتا ہے, وہ دونوں کا ہتھیارا باندھتا ہے, دونوں کو ایک کرتا ہے, اگنی کو ساکشی مان کے پریکرما کراتا ہے, پرتیجائیں لیتا ہے. تو آپ سمجھو اس نے تو دلالی کا کام کیا بس, اس کو اپنا کمیشن مل گیا ہے نا, اس کو برہمن کو دے دیں گے دکشنا دے دیں گے جو بھی ہے. لیکن پھر ور اور ودھو کا آپس میں کام ہے, اگر ودھو ور کو یاد کرنے کی بجائے وہ برہمن کو یاد کرنا شروع کر دے تو کیا ہوگا, وہ برہمن تو بیچ میں آیا اور دونوں کو ملایا, پھر اس کے بعد ودھو کا کام کیا ہے, ور کو ہی یاد کرنا, پتی ورتا استری اس کو کہتے پتی تمہارا پرمیشور ہے جو کچھ بھی کہتے ہیں. اب شیو بابا نے برہما کے رتھ میں پرویش کر اپنی پہچان دی, اب آتما پرماتما الگ رہے بہوکال, سندر میلا کر دیا جب ست گرو ملا دلال, دلال کے روپ میں ملا اور دلال کے روپ میں مل کر کے نظر سے نہال کیا, وہ بھی آج کی بابا کی مرلی میں تھا. تو آپ سوچئے کہ بھگوان اتنا پیار ہم بچوں کو کرتے ہیں, کیا اس پیار کو محسوس کرتے ہیں؟ یہ پیار تب محسوس ہو جب سچ مچ ان کی آگیاؤں کو ہم مہتو دے, فرمان کو مہتو دے. پرنتو اگر یہی ہم نہیں نشچے کر پاتے, یہ بابا کہہ تو رہے ہیں پر پتا نہیں, تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. جیسے گیتا میں دکھاتے ارجن کے من میں کتنی شنکائیں تھی, ہر چیپٹر میں بھگوان اس کو کچھ کہہ رہا ہے پر یہ کیسے ہوگا کیسے ہوگا, من کو کیسے وش میں کریں, یہ من تو بہت چنچل ہے, من ایسا ہے ایسا ہے. پھر بھگوان ان کو یہ بھی کہتے ہیں کیسے کرو, میں ان کو کیسے ماروں, میرے ماما چاچا کاکا ان کو کیسے ماروں, اور بھگوان کہتے یہ تو مرے ہوئے ہی دیکھو, یہ تو سب مرے پڑے ہیں اور آتما تو مرتی نہیں ہے, تو تم کس کو مار بھی نہیں سکتے ہو, ہے تو سارا آدھیاتمک لیکن اس کا روپک بنا دیا ہے. تو بھگوان ان کو آدیش دیتے ہیں پر اس کے من میں پرشن ہی پرشن ہے, کیسے کروں کیسے کروں, تو کیسے کرو کیسے کرو, پھر بھگوان ان کو کہتے ایسے کرو, پھر کہتے کیسے کرو, مانا نشچے نہیں کہ ہم کو سنا کون رہا ہے. پھر جب ان کو کہا مارو تو وہ کہ کیسے مارو, میرے موہ وش تھا. پھر بھگوان نے دوسری یکتی رچی تاکہ وہ اپنا کرتویہ پالن کرے, تم کون ہو پہچانو اپنے آپ کو, تم کشتری ہو مرو اور مارو, کشتری کا تو یہی کام ہوتا ہے. کل بھی بابا نے کہا وہ شراب پلا دیتے مرو یا مارو, اور کشتری لوگوں کی وشیشتا تھی دھرت پڑیے دھرم نہ چھوڑیے, پران جائے پر وچن نہ جائے. یدھ کے میدان میں جاتے تھے, پتنی ان کو تلک لگاتی تھی اور کہتی تھی ہار کھا کے نہیں آنا, وجئی بن کے آنا, اگر مر گئے تو اس کے لیے تیار ہوتی تھی, خود جوہر کرتی تھی, پر ہار کھا کے منہ نہیں دکھانا. کتنی ویر تھی شور ویرنیاں وہ راجپوتانی عورتیں بھی, ستی ہو جاتی تھی, نہ جانے کیا کیا تھا ان دنوں میں. یعنی جو آپ نے وچن لیا وہ واپس نہیں لینا ہے, وہ کرنا ہے. ہم بچوں نے بھی بابا کو کتنے وچن دیے ہوں گے, کتنے بابا سے وعدے کیے ہوں گے, لیکن کتنا ہم پالن کر رہے ہیں ان وعدوں کا. تو ارجن کو کہا تم کشتری ہو, تم تم کو یہ تمہارا یہ کرتویہ ہے اس کو پالن کرو، نہیں تو کہیں گے کہ ہمارے پوروج جو تھے وہ تو کائر تھے، کائر مت بنو۔ پھر بھی ارجن وہی شکایت کر رہا ہے، نہیں کیسے کروں کیسے کروں۔ پھر بھگوان نے تیسری یکتی رچی ان کو سمجھانے کی، ان کو کہا میں تم کو وشو کا مالک بناؤں گا، اس راج یوگ سے تم راجاؤں کے راجا بنو گے، سورگ کا مالک بنو گے۔ وہ کہے ایسا سورگ ہم کو چاہیے ہی نہیں جو میں اپنے رشتے داروں کو ماروں، وہ کی وش تھا نا۔ بچے بھی کہتے بابا یوگ نہیں لگتا، یوگ نہیں لگتا، تم کہتے کچھ تو کہیں مو اٹکا ہوا ہے، مو اٹکا ہوا ہے۔ آج بھی ایک بہن آئی، بہت کہتی تھی میرا من نہیں لگتا، یوگ نہیں لگتا۔ تو میں نے کہا پہلے لگتا تھا، کہا پہلے بہت اچھا لگتا تھا۔ پھر میری جو بہن کا پتی گزر گیا، پتی گزر گیا تو اس کے بعد میرا یوگ ہی نہیں لگتا ہے۔ تو میں نے کہا بہن کا پتی گزر گیا، آپ کا آپ کی بہن میں بہت موہ ہوگا۔ پھر سوچنے لگی بہن میں موہ ہے، میری بہن کا کیا ہوگا کیا ہوگا۔ اسی سوچ میں بابا ہی بھول گیا، بابا سے یوگی بھول گیا۔ ارے بہن کو بھی تو بابا کی یاد دلاؤ نا، کہ یوگی آپ کا بھی ختم ہو جائے وہ بہن کے موہ کے پیچھے۔ تو موہ کتنا بڑا وکار ہے، کام کروت تو ہے ہی، لوبھ تو ہے ہی، لیکن موہ بھی کم نہیں ہے۔ تو ارجن کو اسی وہ موہ کے وش تھا، تو اس کو سورگ بھی نہیں چاہیے، اتنا موہ تھا۔ تو جب ارجن کی یہ باتیں تھی تو آخر بھگوان نے دیکھا کہ یہ تو سمجھ ہی نہیں رہا ہے کہ ان کو بول کون رہا ہے۔ پھر دکھاتے ان کو وراٹ روپ کا ساکشاتکار کرایا، اور جب وراٹ روپ کا ساکشاتکار کرایا تب اس کو لگا کہ ارے یہ کوئی سادھارن منشیہ نہیں بول رہا ہے، یہ شری کرشن کیول منشیہ روپ میں یہ نہیں بول رہا ہے۔ وہ تو بابا کہتے شیو بابا کا نام ہی بھول گئے، بدل دیا ہے۔ چلو کرشن کو بھی دیکھا پر سادھارن روپ میں، متر کے روپ میں دیکھا، دوست کے روپ میں، پر یہ بھگوان کہہ رہا ہے یہ تو اس سمے نہیں سوچا۔ اسی لیے آنا کانی کرتا رہا، بہانے بازی کرتا رہا۔ لیکن جب اس کو یہ لگا کہ ارے یہ تو بھگوان مجھے کہہ رہے ہیں، تو اپنا ڈانڈی اٹھایا، نہ تیر کمان اٹھایا، بھگوان کے چرنوں میں جھکا اور کہا نشٹو موہا سمرتی لبدھا، اب میرا موہ نشٹ ہو گیا ہے، اب مجھے سمرتی آ گئی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو آپ کو بھی سمرتی آ گئی ہے نا سب کو، کہ کیا کرنا ہے۔ جو اوٹے سو ارجن، جو آگے آوے وہ ارجن ہے، ایسا نشچے اور نشا اتنا پکا ہو اور ہر شریمت کا پالن ہو۔ اگر یوگ نہیں لگتا ضرور مرلی کا ٹھیک ادھیان نہیں کرتے، یوگ نہیں لگتا ضرور بابا سے پیار کی کمی ہے۔ وہ ستیم شیوم سندرم سے پیار کیوں نہیں ہوتا ہے؟ دنیا میں ستیہ چیز پیاری لگتی ہے، جھوٹھی چیز پیاری نہیں لگتی ہے۔ بھلے جھوٹی جھوٹے نکلی جیور پہنیں گے، کچھ بھی پہنیں گے، پرنتو سچ سے پیار ہے۔ تو ستیہ سے پریت ہے، ابھی سب سے ستیہ تو ایک پرماتما ہی ہے، ان سے پریت چھوڑ کے کہاں من کو لگائیں ہم۔ اور وہ خود اتنی پریت دینے آیا ہے، خود اتنی اونچی پراپتی کرانے آیا ہے، وہ جھوٹ تھوڑی بولے گا۔ پتا نہیں یہ اگر سوچتے ہیں تو یہیں رہ جائیں گے۔ اسی لیے پریت رکھنے والے کیول نہیں، بابا کہتے نبھانے والے بنو، کیول سوچنے والے نہیں کرنے والے بنو۔ تو بابا کا پیار ہمیں پل پل پر ملتا ہے، بابا کی دعائیں ہر پل پل پر ملتی ہے۔ शिक्षाएं ही हमारे लिए दुआएं हैं, क्योंकि बाबा कहते अपने ऊपर कृपा करनी है, खाली आशीर्वाद मांगो मत, अपने आप पर आशीर्वाद करो। और बाबा इतना ऊंचा भाग्य दे रहे हैं, उसको नहीं समझना माना ये भी कितना बड़ा दुर्भाग्य है। फिर बाबा देखते हैं कि बच्चों को इतना सब करते तो भी बच्चे समझते नहीं हैं, तो फिर बाबा सावधान करते हैं, धर्मराज की भी याद दिलाते हैं मुरलियों में, बच्चे अगर श्रीमद का पालन नहीं किया तो धर्मराज की बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। ये भी भगवान का प्यार है, क्योंकि बाबा नहीं चाहते कि बाबा के बच्चे धर्मराज की सजाएं खाए। कौन पिता चाहेगा कि मेरा बच्चा सजा खाए? अगर पिता जज है और उसका अपना बेटा कोई ऐसा गुनाह करके मुजरिम के रूप में उनके सामने खड़ा है तो उस मुजरिम का तो सिर नीचे हो जाएगा, लेकिन उसके पिता जो जज रूप में है उसका सिर भी नीचे हो जाएगा कि मेरा बेटा ऐसा होता है ना, होता है बिल्कुल, कि मैं अपने बेटे को शिक्षा नहीं दी तभी तो मेरा बेटा ऐसा हो गया, बचपन में अगर उनको शिक्षा दी होती तो आज ऐसा नहीं होता। तो भगवान की हमें शिक्षाएं मिलती है। पर फिर बाबा ये भी जानते हैं बच्चे 63 जन्मों का हिसाब किताब है, ये भी बाबा जानते हैं, ये भी बाबा कहते हैं। फिर बाबा ड्रामा को भी याद करते हैं, बच्चे नहीं करते हैं, बच्चे इनका पार्ट ही ऐसा होगा ड्रामा में, बाबा भी क्या करे, बाबा भी क्या करे। बाबा कई एक मुरली में बाबा कई बार कहते हैं कि अगर किसी को दुख दोगे तो दुखी होके मरेंगे। अब कोई सोचे बाबा ऐसे कहता हमको, हमको क्या डरा रहे हैं, बाबा हमको धमकी दे रहे हैं, बाबा हमको ऐसे कह रहे हैं, क्या श्राप दे रहे हैं दुखी होके मरेंगे। पर ये कहना पड़ता है कि नहीं तो सावधान कैसे होंगे। ये तो वास्तविकता है कि अगर दुख दिया तो दुख मिलेगा। आज अगर बारिश आनी है और वो वेदर रिपोर्ट में आता है आज बारिश आएगी, बहुत आंधी तूफान होगा, घर से बाहर नहीं निकलो या मछुआरे सागर में नहीं जाए, और तो हम कहेंगे क्या कि ये क्यों ऐसे कह रहा, हमको डरा रहा है कि ये बादल आएंगे, आंधी आएगी, तूफान आएगा। आएंगे ना, तो बता रहे हैं, तो सावधान हो जाओ ना। तो सावधान होने की वजह अगर के बाबा ऐसे क्यों कहते हैं, बाबा क्यों नहीं कहेंगे, पर इसमें प्यार भरा हुआ है। फिर बच्चे नहीं कहे, नहीं मानते तो बाबा को ये भी कहना पड़ता है ड्रामा इनका पार्ट ही ऐसा है। अब ड्रामा में हरे का पार्ट अपना अपना है, इसमें बाबा भी क्या करेंगे। तो बाबा हमारे लिए भी ऐसे कहे क्या कि इनका पार्ट ही ऐसा है, हा? या बाबा हमको एक नंबर में A1 में देखे कि ये मेरा मुरब्बी बच्चा, ये मेरा लायक बच्चा, ये मेरा आज्ञाकारी बच्चा, ये मेरा फरमान बरदार बच्चा। क्या बनना है? आज्ञाकारी फरमान बरदार बनना है तो श्रीमत का पूरा पालन करना पड़ेगा। एक एक महावाक्य इतना अनमोल है, उस अनमोल महावाक्य को इतना महत्व देंगे तभी बाबा कहते माला माल बनेंगे। तो इसीलिए श्रीमत का महत्व समझ करके अपना ब्राह्मण जीवन इतना उत्तम बनाना है जो अगर कभी भी ये शरीर छूटे हमको कोई चिंता नहीं, बाबा पलकों में उठा के ले जाएंगे, पलकों में बिठा के ले जाएंगे, सूली से कांटा, मक्खन से बाल, ऐसा कर देंगे बाबा। पर बाबा का दिल तख्त जीतो, और दिल तख्त कौन जीत सकता है, जो इतना आज्ञाकारी होगा। तो इसीलिए श्रीमत के महत्व को समझकर बाबा के मुरली को इतना हम महत्व दें और अपने जीवन में लाकर अपना योगी जीवन सफल करें, यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। चलिए बाबा को याद करेंगे।
देते रहो दुआएं, नहीं अवगुण